پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے. پاکستان میں ریڈیو پر براہ راست میڈیا ویو 972 پر, انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو کی ویب سائٹ urduvoa.com پر اور فیس بک پر ان لنکس پر facebook.com/hardamrawahizindagi اور facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. ان لنکس پر اس پروگرام کو اس وقت براہ راست سننے کے بعد آپ اس پروگرام کی ریکارڈنگ انہی لنکس کے ذریعے کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. پروگرام کے دوران ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہوتا ہے 0800-777-89. اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون ہے پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر کانیلی کا. تو لیجیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں.
Professional services that will make you feel at home.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں میک اپ اور ہیئر اسٹائلنگ کی ایک ماہر اور کاروباری دنیا میں آگے بڑھتی ہوئی ایک پاکستانی امریکی خاتون امبر نجم, جو یہاں امریکی ریاست ورجینیا میں ایک بیوٹی اور ہیئر سیلون بڑی کامیابی سے چلا رہی ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ہماری مہمان امبر نجم اپنے ہیئر اور بیوٹی سیلون لیلاز اسٹوڈیوز میں پاکستان کے روایتی اور جدید ملبوسات اور جیولری پیش کر کے اسے پاکستان کے روایتی اور جدید ثقافتی رنگوں کو امریکہ میں متعارف کرانے کا ایک ذریعہ بھی بنا رہی ہیں. ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. ہماری مہمان امبر نجم اس وقت موجود ہیں امریکی ریاست ورجینیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم امبر نجم صاحبہ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
میں ٹھیک ہوں اور آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالنے کا. آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ بلوچستان کے ایک روایتی گھرانے کی ایک خاتون کے لیے یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ یہاں امریکہ میں بزنس کی دنیا میں اور خاص طور پر میک اپ اور ہیئر اسٹائلنگ کے بزنس میں نہ صرف قدم رکھے بلکہ خوب جما کر قدم رکھے اور اسے اتنا کامیاب بزنس بنا دے کہ پاکستان اور جنوبی ایشیا کی فن کی دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے دوسرے شعبوں کی مشہور شخصیات بھی اس کی سروسز سے استفادہ کرنے لگیں. تو کچھ شیئر کریں اپنی کہانی ہمارے سننے والوں سے.
ہاں جی ضرور. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور تھینک یو سو مچ. بس جی شروع ہو گیا کام. محنت کی بات ہوتی ہے اور وقت وقت کی بات ہوتی ہے. ایک ٹائم تھا جب نہیں کرتے تھے, اب ہے کام کر رہے ہیں اب. اور کام تو کام ہے, محنت کی بات ہے ساری. اور بس یہاں جب میں آئی اور میں نے شروع کیا اپنا کام تو میں نے اویرا سیلون سے اسٹارٹ کیا اپنا کام اور وہاں پہ بس محنت کی اور اسکول بھی پھر وہی جوائن کیا. اس کے بعد شروع ہو گیا کام. اس کے بعد 12 سال تک میں کرتی رہی اویرا کے ساتھ کام. اس کے بعد جو تھا کیونکہ میری بچی ہو گئی تو میں نے کہا مجھے اپنا اسٹوڈیو کھولنا چاہیے کیونکہ یو نو آپ کو اپنے گھر کا بھی خیال کرنا ہے, فیملی کو بھی دیکھنا ہے.
لیکن اس کے لیے پہلے آپ نے باقاعدہ پڑھا, یعنی کہ
بغیر آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, مطلب پڑھائی کے بغیر تو کوئی بھی چیز نہیں ہے نا, وہ بھی اسپیشلی امریکہ میں.
تو جب آپ پاکستان سے یہاں پر آئی تھیں تو آپ ایک یوگا کی انسٹرکٹر تھیں, لیکن یہاں آ کر آپ کو یہ چانس ملا کہ آپ میک اپ اور ہیئر اسٹائلنگ سیکھ سکیں, اور لیکن اس کے لیے پھر آپ نے باقاعدہ پہلے اس کی ایجوکیشن بھی حاصل کی, اس کی
ٹریننگ. آپ کو لائسنس لینا ہوتا ہے, آپ کو اسکول جوائن کرنا پڑتا ہے, ایک سال کا ہوتا ہے وہ پورا. وہ آپ کو کام پہلے स्कूल जाके जब आपको लाइसेंस मिल जाता है देन यू कैन स्टार्ट वर्क, लाइक आप फिर आप कर सकते हैं काम एज अ स्टाइलिस्ट।
अच्छा, तो आपने पूरा वो एक साल का कोर्स जब किया तो उसमें ये सब चीजें सीखी जो अब आपके काम आ रही हैं।
कॉस्मेटोलॉजी का होता है उसमें मेकअप हेयर नेल सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, वो सारा आपको कुछ करना होता है। कुछ अब इधर स्कूल से किया, ग्राम वैप से किया और इसी तरह मतलब सब कुछ करके फिर आप स्पेशलाइज, लाइक अगर आप हेयर करना चाहते हैं या मेकअप करना चाहते हैं किस पे ज्यादा आपका जोर है, तो आई वॉज वेरी मच इन हेयर, तो मैंने कहा मैं आप यही करती हूँ पहले, तो वही किया। फिर मेकअप भी क्योंकि सीखा हुआ था तो जब घर से काम स्टार्ट हुआ तो उसके साथ साथ ब्राइड्स का और यू नो जितनी वेडिंग्स वगैरह होती थी वो भी शुरू कर दिया मैंने काम।
तो पहले शुरू आपने अपने घर से ही किया, यानी वहां से तो छोड़ दिया फिर, और फिर अपने घर में जब बच्ची के बाद आपने घर में काम शुरू किया,
फिर शुरू किया। फिर इसी तरह फिर जैसे अब यहाँ पे शोज होते हैं अपने, एग्जीबिशन वगैरह होती है, लोग कपड़े वगैरह रखते हैं और फिर जो उनके रह जाते हैं वो फिर हमारे स्टूडियो में आ जाते हैं, इसी तरह मतलब यू नो काम हमारा चल रहा है।
अच्छा, तो क्या इसमें यहाँ पर पाकिस्तानी अमेरिकी खवातीन के लिए और जो इमिग्रेंट खवातीन हैं उनके लिए ये जो बिजनेस है मेकअप का और हेयर स्टाइलिंग का वो शुरू करना बहुत आसान है? इसमें कितनी सरमायाकारी की जरूरत पड़ती है और क्या उसके लिए उन्हें लोन्स वगैरह मिल जाते हैं या फिर वो खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करती
हैं? आसान तो कोई भी चीज नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ता है और आपको पढ़ना भी पड़ता है। कुछ लोग तो बस आजकल जैसा है कि यूट्यूब खोला सीखा और शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है, आपको बकायदा सीखना पड़ता है हर चीज के लिए, हर चीज में मेहनत है, ठीक है ना, हर कोई कर सकता है।
लेकिन इसके लिए लोन्स वगैरह यहाँ मिलने की सहूलत है?
लोन का है मतलब आप ले सकते हैं, बट वही बात हो जाती है जैसे आप मॉर्गेज का पे कर रहे होते हैं, आपको लोन जो है आपको लोन वापस भी करना है, तो इससे यू नो वो भी एक वो है मसला है। एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, जैसे कि अगर आप कोई स्कूल ज्वाइन करते हैं जैसे कि ग्रैंड वेब है, फॉर्मेचर है, दूसरे स्कूल्स हैं, तो अगर आप जाके वहाँ पे उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको ये नहीं है कि आपने 10,000 या $20,000 जो है आपने फॉरन दे दिए, आपको जब आपकी जॉब हो जाती है उसके बाद यू कैन पे मंथली। अब कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जैसे हमारे बलोचिस्तान की लड़कियां या दूसरी जगह की लड़कियां जो लोग अपने बच्चियों को बाहर नहीं भेजना चाहते, वो बहुत आराम से ये चीजें कर सकते हैं घर में बैठ के, और यू नो आप वही बात आ जाती है सारी मेहनत की।
मेहनत की, और आप इस शोबे में पहले तो आपने मेहनत ये की कि उसको सीखा, न सिर्फ सीखा बल्कि इसके लिए बाकायदा लाइसेंस लिया, और लाइसेंस लेकर जब ये शुरू किया तो अपने दिन रात इसमें वक्फ किए, लेकिन साथ साथ अपने घर को भी चला रही हैं और साथ साथ ये बिजनेस भी, और अभी सब तक बड़ा हो गया। कुछ बताइए कि किस लेवल का अब आपने इसको बना दिया है, कि कौन कौन सी हमने फेसबुक पर कुछ तस्वीर पोस्ट की कि आपके पास तो बहुत मशहूर शख्सियात भी आती हैं बाल बनवाने के लिए।
शोज वगैरह होते हैं उसमें मैं जाती हूँ काफी, जैसे शबाना घोषाल, पीवी जेंटा और काफी लोग, काफी स्टार्स हैं जिनका किया है मैंने, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन लोगों ने मुझे काबिल समझते हैं, बुला लेते हैं मुझे वो लोग।
अच्छा,
तो उनका भी काम होता रहता है साथ साथ ये है कि घर पे जैसे आपने कलर किया, हाईलाइट किया, हेयर कट किए और यू नो फेस पॉलिशिंग होती है, और हमारे पास कपड़े भी हैं क्योंकि आप देख सकते हैं पाकिस्तानी कपड़े हमारे, और आजकल खुद से भी आए हुए हैं लाहौर के जो कि बड़े जालिमाना हैं, बड़े मजेदार हैं।
अच्छा, तो ये सब चीजें साथ साथ आपके ये स्टूडियो जो आपने बना लिया इसमें इन सब चीजों को आप हाईलाइट करती हैं और पेश करती हैं, तो क्या
मैं ये चाहती हूँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो बच्चियाँ मेरे पास आए ताकि मैं उनको सिखा सकूं।
अच्छा, ये सवाल भी आपसे पूछेंगे कि आप इस सिलसिले में और क्या करती हैं, लेकिन पहले ये बताइए कि आप जाहिर है कि पाकिस्तान में एक अरसा गुजार कर आई हैं, क्या फर्क है पाकिस्तान में जो खवातीन इस शोबे में बिजनेस करती हैं और यहाँ पर जब खवातीन इस शोबे में बिजनेस करती हैं?
यहाँ पे तो देखे ना ये है कि आप कोई भी चीज करते हैं अगर मेहनत से तो उसका आपको सिला मिल जाता है, राइट? पाकिस्तान में जब आप कर रहे होते हैं तो वहाँ थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अब काफी चीजें चेंज हो गई हैं पाकिस्तान में भी। अब तो काफी लोग बाहर निकलना शुरू हो गए, काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, और यहाँ पर ये है कि बस आप अपना इज्जत से चला रहे हैं, अपना कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, आप आराम से अपना यू नो लगे आप अपने उस पर। पाकिस्तान में ये वहां पे भी लोग अब मेहनत कर रहे हैं, वहां भी अब काफी औरतें बाहर निकलना शुरू हो गई है जो कि ये होना चाहिए, विच इज रियली गुड।
अच्छा,
तो जी
लेकिन ये कि जो मर्द भी आते हैं यहाँ पर ज्यादातर इन...
मर्द आते हैं सैलून्स में, स्टूडियोज में, बट मैंने अपना वो चीज नहीं रखा हुआ है। जी,
आप क्या सिर्फ
क्योंकि
खवातीन?
काफी ऐसे लोग हैं जो कि हिजाबी लोग हैं, यू नो, और कुछ लोग ऐसे हैं वो नहीं चाहते कि ऐसी जगह जाएं जहाँ पे मर्द हो, तो उनके लिए जरा सिक्योर रहता है सारा कुछ। तो यू नो, मैंने नहीं किया, मैं कर या वो मैं नहीं करती हूँ।
अच्छा, तो आप ज्यादातर सिर्फ ज्यादातर क्या आपका सिर्फ मखसूस है खवातीन के लिए?
हाँ जी, हाँ,
हाँ
शुरू से था मेरा। जब मैं अवेरा में थी तो वहां पे भी मेरा ऐसे ही था कि मैं वो क्लाइंट नहीं लेती थी, मेरे दूसरे सारे जितने हैं सब करते थे,
अच्छा,
बट मेरा एक अपना वो है।
तो क्या इससे आप समझती हैं कि आपके बिजनेस में कोई कमी नहीं आ जाती? आपने स्कोप अपना दायरा
नहीं
कम कर
ऐसा कुछ
लिया,
नहीं
महदूद
है,
कर
नहीं,
लिया?
ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस तो आपका चलता रहता है ना, शादियां होती रहे, शोज होते रहे, और लोगों के बाल जो है वो सफेद होते रहे, हमारा बिजनेस चलता
अच्छा,
रहेगा।
सफेद बाल आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए बड़े
बहुत
अच्छे
काम के हैं।
काम की है। तो लेकिन आपके क्या रेट्स, आप क्या करती हैं कि जब पाकिस्तानी अमरीकी खास तौर पर खवातीन आती हैं और जो दूसरी तारकीन वतन खवातीन आपके पास आती हैं, तो उनकी डिमांड्स क्या होती हैं आमतौर पर जब वो अपने बाल सेट करवाती हैं, तो क्या आपसे खास तौर पर पूछती हैं या तलब करती हैं?
मतलब किस चीज में आप?
मतलब किस तरह की हेयर हेयर स्टाइल वो प्रेफर करती
अच्छा,
हैं?
ज्यादातर यहाँ पे मेजोरिटी जो पाकिस्तानी और इंडियन जितने भी हैं, हमारी औरतें जो भी हैं, उनको एक ही वो ट्रैक पे चल रहे हैं काफी सालों से, जो कि उनको वही लॉन्ग नेल्स चाहिए, उनको वही सेम हेयर कट चाहिए, जो कि अब मेरा सिग्नेचर हेयर कट बन गया वो, विच इज लाइक, अब ये है कि कुछ शॉर्ट नेल्स मांग रहे होते हैं, मतलब हेयर कट में ऐसा होता है, और हाईलाइट जो है कुछ जो है वो बहुत सटल चाहते हैं, और कुछ लोग बहुत लाइक यू नो एश ब्लॉन्ड या कुछ इस तरह से, दे डोंट गो विथ फैशन लाइक विथ ट्रेंड, वो लोग चाहते हैं ज्यादातर लाइक वही जो एक चीज चलती आ रही है जो हमारे
अच्छा
पाकिस्तान में है, जो हर जगह मतलब वही वही कट वही चीज चल रही है।
अच्छा तो कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, यहाँ
कहते
पर जो पाकिस्तान
हैं बेचारे, कहते हैं, मुझे बोलते हैं कि कुछ कुछ डिफरेंट कर लें, जरूर करें भाई, इससे अच्छी और क्या बात है, आप अपने बालों को काटें, शॉर्ट करें, कोई डिफरेंट काट लें,
अच्छा
बट एंड फिर यही होता है कि लेंथ यही रहनी चाहिए।
अच्छा वो कोशिश करते हैं कि
जी
बाल जो हैं वो नजर आए जितने हैं।
नजर आए। जी हाँ,
अच्छा,
जी हाँ,
तो वो जो आपके पास ये जो इमिग्रेंट दूसरी खवातीन है दूसरे मुल्कों की, दूसरी कम्युनिटीज की,
जी जी
वो कम्युनिकेट करती हैं आपसे अंग्रेजी जबान में और उस
हाँ जी हाँ जी, मेरे जितने भी मतलब मोस्टली मेरे 75% जो क्लाइंट्स हैं वो सारे गोरे हैं, वो इस वजह से क्योंकि मैं अवेरा में काम करती रही और वहाँ 12 साल काम किया, तो उन्होंने मुझे कुछ क्लाइंट्स ने मुझे फॉलो किया, तो वो अभी तक मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, वेरी यू नो लाइक वेरी लॉयल क्लाइंट्स।
अच्छा,
तो अब उनका तो फिर यही होता है ना, वो लोग चेंज चाहते हैं, उनका मैं करते रहती हूँ, उनको ज्यादा ब्लॉन्ड हाईलाइट चाहिए होती हैं, वो लोग फिर यू नो क्योंकि गोरे हैं उनका वही स्टाइल है, बट ये है कि वो तैयार होते हैं अपने डिफरेंट लुक के लिए,
अच्छा
तो मजा आता है जरा काम करने में भी कि आप एक जैसी चीज नहीं कर रहे, यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट।
अच्छा ये बताइए कि एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर कि हेयर स्टाइल का शख्सियत पर किस हद तक असर होता है, और जो लोग
बहुत फर्क पड़ता है, बहुत, आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है ना वो चेंज हो जाती है, ट्रस्ट कि कई दफा मतलब आप, मैं भूल जाती हूँ अक्सर, मैं सोचती हूँ कि बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स लगाऊं, कई दफा इतना ज्यादा बिजी आप होते हो कि आपके दिमाग में नहीं रहता, निकल जाते हैं, बट अब मैं लगाना शुरू करूंगी दोबारा से वो पिक्चर्स कि आप खुद देखेंगे कि कितना फर्क है।
तो फिर वो लोग या वो खवातीन जो किसी हेयर स्टाइलिस्ट की सहूलत हासिल नहीं कर सकती, उनके लिए आप क्या कहेंगी, वो किस तरह अपने बालों को संवारे और किस तरह अपनी शख्सियत को जाजिब नजर बनाए?
भाई उनको भी ये चाहिए कि अपने हर दूसरे दिन जो है अपने बालों को शैम्पू कंडीशनर करके रखिए, हफ्ते में एक दफा ऑयलिंग करें, और खैर फिर भी उनको मतलब 5-6 वीक्स में एक दफा बालों की ट्रिम के लिए तो आना ही पड़ेगा ना, ट्रिमिंग तो जरूरी है ही है, लेकिन
अच्छा
ये कि घर में वो कम से कम अपने जैसे छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स होते हैं वो करते रहें, अगर उनको नहीं कहीं जाना, ये नहीं है कि एक एक हफ्ते तक उन्होंने सर नहीं धोया, यू नो, और ये सब कुछ उन पे डिपेंड करता है, लेकिन कर सकते हैं वो करना नहीं चाह रहे होते, लाइक वो बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे बट उनके बाल अगर आप देखें तो होता है कि भाई आप बालों पे भी कुछ कर लें,
बालों को भी कुछ करें, उसको भी तवज्जो दें। तो लेकिन मौसम जब तब्दील होता है तो उस वक्त हमने देखा, हमारे अपने तजर्बे में भी आया कि बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं सर के, तो
ये एक, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक पता है क्या, ये जैसे मौसम चेंज होगा ना, जितने बाल आपके गिरते हैं उतने ही वापस आ जाते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। ये हर जैसे कभी गर्मी आएगी एकदम आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे और फिर ठीक हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और फिर जैसे सर्दी आएगी तो फिर ये एक है ये चीज।
लेकिन बाज लोग बिल्कुल महरूम हो जाते हैं बालों से।
वो अब कुछ तो लोगों का ये होता है कि इनहेरिटेड भी होता है, ठीक है, कुछ लोगों का एज का भी होता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब जैसे ग्रे बाल हैं, लोग कहते हैं बेचारी, कुछ बच्चियां आती हैं जो लाइक 24-25 ईयर्स ओल्ड हैं, जो लाइक हम क्या करें, हमारे बाल ग्रे हो गए हैं। तो इट्स नॉट लाइक एज है उनकी, नहीं, वो असल में कई दफा ये होता है, आप पढ़ रहे हैं, आपको बहुत स्ट्रेस है बच्चों को, राइट, उनके वजह से हो गया। कुछ लोग इनहेरिटेड हैं, 30% एज होती है कि भाई एज की वजह से आपके बाल जो हैं वो यू नो ग्रे हो गए।
हाँ, लेकिन आमतौर पर किसी हमने खातून को गंजा होते नहीं देखा,
हाँ,
बाल फिर भी निकल ही आते हैं उसके, जो है दो चार निकले, लेकिन मर्दों के आमतौर पर काफी बाल जो है वो खत्म हो जाते हैं,
क्योंकि मर्दों पे स्ट्रेस ज्यादा होता है ना, उन्होंने उनको अपनी पूरी फैमिली को चलाना है, उनको जॉब करना है, बाहर निकलना है उनके, यू नो।
तो लेकिन बहुत सी खवातीन पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन इसके बावजूद उनके जो बाल हैं उस अंदाज में नहीं झड़ते जिस तरह के मर्दों के झड़ जाते हैं सर के।
हाँ, वो इसी की स्ट्रांग होती है ना, औरतें स्ट्रांग हैं।
अच्छा अच्छा,
तो औरत ये... तो स्ट्रांग है, वो तो उसे हर चीज देखनी है, उसे घर भी देखते हैं, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ करना है, यू नो।
अच्छा।
तो हम लोग स्ट्रांग होते हैं, मर्द इतने स्ट्रांग नहीं है।
अच्छा, और कम से कम उनके सर के बाल जो हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते जितनी खवातीन के होते। अच्छा, लेकिन फिर भी आप क्या मशवरे देंगी कि वो अपने, जो खवातीन चाहती हैं या जो मर्द चाहते हैं कि वो अपने सर के बालों को सेहतमंद रखें और उनको झड़ने से बचाएं और उनको काला रखें, स्याह रखें, बगैर खिजाब के, बगैर कलर के, हेयर कलर के, तो वो क्या करें? कुछ तो आपने बता दिया
है ना, वो तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। अब ये तो अल्लाह की तरफ से है कि अगर ग्रे बाल आपके निकल आए तो निकल आए, आपको कलर तो करना ही है, कुछ लोग नहीं करते, सॉल्ट एंड पेपर लाइक यू नो वैसे उसमें ही अच्छे लगते हैं वो इतने कि वो कहते हैं छोड़ो कौन करेगा, कुछ लोग जो है वो करते हैं, कुछ लोग बहुत रेगुलर करवाते हैं। बाकी ख्याल करने की जहाँ तक बात है वो ये है कि भाई आप अपने विटामिन लें, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आप क्या खा पी रहे हैं, ऑयलिंग करें अपने बालों की, यू नो आप ख्याल करें, वही बात आ जाती है कि आपको 4-5 weeks के अंदर अंदर जो है बालों का ट्रिम करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे लोगों के माइंड में है कि नहीं, अगर बाल हमने 4 weeks के बाद ट्रिम करवाए ना तो छोटे हो जाएंगे, नहीं, वो हेल्प करता है, ग्रो करते हैं आपके बाल, आप डेड एंड्स आप निकालोगे अपने बालों के, यू नो मेंटेन, अब एक घर है आप उसको मेंटेन करेंगे तो आप घर वैसा रहेगा ना आपका।
अच्छा, तो ये एक जमाना था बहुत ज्यादा सरों में तेल लगाए जाते थे, अब ये रिवाज खत्म हो गया है, फैशन में नहीं रहा तेल लगाना, तो
नहीं, अब तो आपको पता है कि यहाँ अमेरिका में स्पेशली इफ यू गो टू अवेयर सैलून, आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे इतने ऑयल्स आ गए, जितने ऑयल्स हम अपने बचपन में यूज करते थे लाइक नारियल का, कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल, अपना जितने भी ये ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल, अब वो सब वहाँ पे उनकी बकायदा ऑयल ट्रीटमेंट होता है।
अच्छा।
जिसका वो अच्छा खासा उस ऑयल ट्रीटमेंट का $75 चार्ज करते हैं वो, ठीक है।
तो ये बहुत जरूरी है कि खवातीन जो है वो वापस उस तरफ आएं, तेल अपने सरों पर लगाएं और चले बाहर लगा कर ना निकले तो कम अज कम छुट्टी के दिन या
एक घंटे के लिए लगा के उसको शैम्पू कंडीशनर कर लें।
अच्छा,
ऑयलिंग तो जरूरी है ही है, वो तो आपको करना है क्योंकि आप हाईलाइट करते हो, कलर करते हो, आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, यू नीड ऑयलिंग, यू नो।
तो आप ये कह रही कि जब हेयर कलर करते हैं तो बालों को नुकसान तो होता है ना?
ड्राई होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और लेकिन कलर से नहीं, हाईलाइट से। आप ब्लीच यूज करेंगे तो ऑफकोर्स वो तो फिर, अब जैसे कोई क्लाइंट आ जाए मेरे बालों को बिल्कुल चेंज कर दें, बिल्कुल ब्लॉन्ड कर दें, तो आप जब तक ब्लीच यूज नहीं करेंगे आप कैसे ब्लॉन्ड करेंगे उसको? तो जब आप ब्लीच यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बाल ड्राई तो होंगे।
तो जब ड्राई होंगे तो झड़ेंगे, फिर उसके बाद
झड़ेंगे भी, बिल्कुल बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं फिर आपके बाल।
तो किस किस्म के हेयर कलर्स आप सजेस्ट करेंगे कि लोग इस्तेमाल करें, क्या चीज मद्देनजर रखें जब वो अपने बालों को रंगे? तो
आजकल अमोनिया फ्री कलर्स आए हुए हैं, लेकिन गो फॉर अमोनिया फ्री कलर्स, हर जगह मिलते हैं। अगर आप वेगमेंट से चले जाओ, अच्छे सैलून पे चले जाओ, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे लाइक अवेडा के जितने कलर्स हैं, अब तो रेडकिन के भी कलर्स जो हैं वो काफी मतलब इस तरह हैं कि जो कि अमोनिया फ्री हैं, लेकिन बस यही बात है ना कि अगर आप लंच या डिनर पे जा सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, तो बालों के लिए क्यों नहीं कर सकते आप।
तो आपने जब ये हेयर स्टाइलिंग का बिजनेस शुरू किया था तो आपको उम्मीद थी कि ये बिजनेस आप इतना आगे तक ले जा सकेंगी?
मेरी पूरी थी बिल्कुल, मेरा ये ड्रीम भी था कि मैं चाहती थी मेरा अच्छा नाम हो इस बिजनेस में, ये मेरी एक ख्वाहिश थी बहुत बड़ी और अल्लाह ताला ने उसको पूरा किया।
लेकिन मसाइल तो पेश आए होंगे,
बहुत ज्यादा मसाइल थी बहुत।
नहीं, क्या मसाइल? खास तौर पर अगर कोई पाकिस्तानी अमरीकी खातून यहाँ पर कोई हेयर स्टाइलिंग का पार्लर खोलती है तो उसको क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं?
अब देखिए, अब आप जब शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके पास कोई भी गोरा आता है, ठीक है, जैसे मेरे पास मेरा एक बहुत अच्छा एक कुछ छोटा सा मैं आपको सुनाती हूँ, एक स्टोरी है छोटी सी। अवेडा में मैं काम करती थी और क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया से एक औरत मूव हो गई इधर यहाँ पर, वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आई और जब वो मेरे पास आई उसने मुझे देखा, उसने उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप कहाँ से हो? मैंने कहा फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, अच्छा अच्छा, शी वाज क्वाइट। तो उसने मुझे एक बात बोली कि मुझे ना डोंट टच मी एंड डोंट टॉक टू मी, एंड आई वाज लाइक इसने मुझे क्या बोल दिया ये, यू नो। मैं छुप करके गई, बैक रूम में गई और जाके मैंने कलर मिक्स किया और उसको कलर लगा दिया और कर दिया, और मैंने उससे बिल्कुल बात नहीं की और वो चली गई। तो मैंने कहा अब ये मेरे पास नहीं आएगी नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम में फिर देखा तो मैंने उसे 4 वीक्स के बाद मेरे ही साथ अपॉइंटमेंट दोबारा से कर दी। तो कुछ गोरे ऐसे होते हैं जो हमारे बारे में जैसे वो सुनते हैं या हम मुसलमान हैं या पाकिस्तान से हैं, तो यू नो थोड़ा उनमें एक वो चीज आ जाती है।
तो ये मसला यहाँ पेश आ जाता है कभी कभी,
आ जाता है
अक्सर नहीं कभी कभी,
लेकिन जब आप जरा मिलते हैं बात करते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि यू नो लाइक एवरीबॉडी इज नॉट लाइक, हम इंसान है भैया आप लोगों की तरह। और वो मेरे पास फिर 5 साल तक आती रही जब तक उसकी यहाँ पे जॉब थी।
तो उसकी वजह आपका वो हुनर था जो उसको बालों को खूबसूरत बना देता था और जो उसको बार बार आपके पास लेकर आता रहा।
बिल्कुल।
तो बेहद शुक्रिया अंबर नजम, हमारी गुफ्तगू भी जारी है। सर के बालों की बात हमने की, हेयर स्टाइलिंग की बात हमने की, अब हम चेहरे की जिल्द के बारे में भी बात करेंगे, मेकअप की भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रमा है जिंदगी में हमारी आज की मेहमान हैं मेकअप और हेयर स्टाइलिंग की एक माहिर और कारोबारी दुनिया में आगे बढ़ती हुई एक पाकिस्तानी अमरीकी खातून अंबर नजम, जो यहां अमरीकी रियासत वर्जीनिया में एक ब्यूटी और हेयर सैलून बड़ी कामयाबी से चला रही हैं। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली हमारी मेहमान अंबर नजम अपने हेयर और ब्यूटी सैलून लैलाज स्टूडियोज में पाकिस्तान के रिवायती और जदीद मलबूसात और ज्वेलरी पेश करके इसे पाकिस्तान के रिवायती और जदीद सकाफती रंगों को अमेरिका में मुतारिफ कराने का एक जरिया भी बना रही हैं। हमारी मेहमान के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/hardamrawahizindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasmeenjameel.voaurdu। हमारी मेहमान अंबर नजम इस वक्त मौजूद हैं अमरीकी रियासत वर्जीनिया से टेलीफोन पर हमारे साथ। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अंबर नजम, हमारे सुनने वालों को और खासतौर पर खवातीन को ये बताइए कि खवातीन को मेकअप किस उम्र में और किस हद तक करना चाहिए कि उनकी जिल्द पर उसका असर ना पड़े, और किन मौकों पर किस हद तक और किस तरह का मेकअप और स्टाइल आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना सकता है।
हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन,
दो तीन सवाल मैंने इकट्ठे कर दिए हैं।
हाँ जी, काफी सारे इकट्ठे कर दिए आपने। तो मैं से शुरू करते हैं कि लाइक अब देखें जैसे 13 इयर्स से मेरे ख्याल में सन ब्लॉक बच्चियों को या बच्चों को सबको लगाना शुरू कर देना चाहिए। धूप से काफी आपकी स्किन वो हो जाती है ना, खराब हो जाती है, वो एक आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा मेकअप इज नॉट गुड फॉर योर स्किन, क्योंकि आप जब लगाते ही रहते हैं हर वक्त, किसी को बच्चों को पता नहीं होता कि हम कौन सा फाउंडेशन लगा रहे हैं, कौन सी क्या चीज लगा रहे हैं। बस वो लगा लेते हैं कि बस हमारी स्किन अच्छी लग रही है और ये वो.
फिर
एनीवेज बात ये है कि मेकअप जो है वो आपको करना तो पड़ता है, जैसे कि अगर आप जॉब पे जा रहे हैं या यू नो आपको करना है, आपको अच्छा लगना है क्योंकि आपने 10 लोगों के सामने जाके खड़े होना है, तो यू वांट टू लुक गुड. बाकी ये है कि मेकअप अगर आप करते हैं तो फिर आपके पास क्लेंजर अच्छा होना चाहिए कि रात को आप उसको अच्छी तरह से अपने मेकअप को उतार के सोएं. कुछ लोग जो हैं वो मेकअप के साथ ही सो जाते हैं जो कि स्किन आपकी काफी खराब हो जाती है, फिर पिंपल्स हो जाते हैं, मार्क्स हो जाते हैं एंड ऑल दैट. तो ये है कि ख्याल करना पड़ता है कि आपका क्लेंजर अच्छा हो, मॉइस्चराइजर अच्छा हो. अच्छी स्किन रखने के लिए आपको पानी बहुत पीना है और ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं.
और जो ख्वातीन हैं आप ये समझती हैं कि मामूली मेकअप के साथ भी अपने आप को जाजिम नजर बना सकती हैं, जरूरी नहीं कि वो खूब थोक ले मेकअप फिर ही.
नहीं, आप हल्का सा भी मेकअप करें, यू कैन लुक गुड. हल्का सा ब्लश ऑन लगा लिया आपने, थोड़ा लिप ग्लॉस लगा लिया, रीजनेबल लगना चाहिए आपको. अब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही हाथ मुंह धोया साबुन के साथ और आप बाहर आ गए. तो यू नो वो भी आपके लिए जरूरी है कि आपको थोड़ा बहुत जो है अपने आप को ठीक ठाक रखना चाहिए. थोड़ा हल्का ब्रश ऑन लगा लिया, कभी कभार आई लाइनर अगर आप लगाना चाहते हो वो भी आप लगा सकते हैं, लिप ग्लॉस लगा लें. थोड़ा सा ग्लो दे देता है स्किन को, यू नो योर लुक थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाती है आपके फेस पे.
अच्छा, तो लेकिन उसके बाद जरूरी है कि आप उसे उतार भी लें जो मेकअप आप.
बिल्कुल, रात को सोने से पहले आपको अपने फेस को क्लीन करके अच्छी तरह से और मॉइस्चराइजर लगा के आपको फिर मतलब रखना चाहिए.
अच्छा, आजकल एंटी एजिंग क्रीम जो होते हैं ना, जो उम्र को बढ़ने से, हाँ, चेहरे पर उनका असर ना आए उम्र का, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो उनके इस्तेमाल के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए और आए उनको करना चाहिए तो कब शुरू करना चाहिए उनको?
कर लेना 30s से मेरे ख्याल में स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि 30s से ऊपर जो है फिर आपको जरूरत होती है. मतलब 30s से कुछ लोग कहते नहीं अभी इट्स टू, मतलब बहुत ही जल्दी आपने कर लिया ये, नहीं, 30 इज द बेस्ट टाइम कि आपने अपना एंटी एजिंग क्रीम शुरू कर दी, आपने अपनी स्किन का ख्याल करना शुरू कर दिया. वंस अ मंथ जस्ट गो फॉर अ फेशियल, ऐसी छोटी मोटी चीजें आपको रखना चाहिए. स्किन को साफ रखना तो बहुत जरूरी है ना आपके लिए.
अच्छा.
अब कुछ लोग फाउंडेशन बहुत लगा लेते हैं और वो फिर नहीं, उसको नहीं वॉश नहीं करेंगे रात को.
अच्छा, तो ये बड़ा नुकसान
देता है, वो फिर आपकी स्किन खराब होती है, फिर जल्दी आपके रिंकल्स भी होंगे, लाइनें भी पड़ेंगी, फिर आपको जो लोग रात को बहुत देर तक जागते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है.
लेकिन जिन्होंने सारी उम्र एंटी एजिंग क्रीम ना लगाई हो वो अगर लगा लें तो फिर
बस थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाएगी स्किन पे, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा.
फर्क नहीं पड़ेगा,
हाँ, ऐसा कोई खास नहीं है कि कोई मैजिक नहीं है कि आपने 60 इयर्स के आप हो गए और आपने एकदम से सोचा कि अब हम कुछ करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है कुछ भी,
ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा, नींद का स्किन पर क्या असर पड़ता है? बस बच्चे क्या, आजकल तो बड़ा ट्रेंड है रातों को जागने का, बच्चियां बहुत जागती हैं रातों को, इंटरनेट पर भी होती
है, तो वो बस फिर उनके आई सर्जर्स होते हैं, उनकी स्किन ऐसी नहीं होती जैसे होने चाहिए. अब देखिए ना, पहले जो था वक्त, एक टाइम होता था, सब सोते थे टाइम पे, जागते थे टाइम पे, आपकी खुराक अच्छी थी, आप अच्छे खाने खाते थे, यू नो हेल्दी फूड होता था आपका. आप तो ये कि जो भी मिला बर्गर्स खा लिए, वो सब चीजें आपकी स्किन को खराब कर रही होती हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, पानी आप सही तरह से नहीं पी रहे हैं, ये सब कुछ आपके स्किन पे जा रहा होता है.
तो किस किस किस्म की गिजा जो है वो स्किन के लिए अच्छी है?
किस किस किस्म की
क्या खाएं?
ऑयल ज्यादा नहीं हो आपके खाने में, ऑयल बहुत कम होना चाहिए और मिर्चें बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए, जैसे खूब डाल डाल के सॉस, यू नो सॉस एंड ऑल दैट, वो आपके लिए अच्छा नहीं है. जितनी भी आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं.
और दूध, दूध का इस्तेमाल कैसा रहता है स्किन के लिए?
दूध का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप 40-50 इयर्स के हो गए और आप सोचें कि अब हम जी रोज एक ग्लास दूध का पियेंगे, तो फिर वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला.
अच्छा,
शुरू से ये आदतें होनी चाहिए, शुरू से ये काफी मतलब एक रूटीन होनी चाहिए इन सब चीजों के लिए.
अच्छा, वरना तो एकदम से आप शुरू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता?
नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा ना आपका. कैसे होगा कि आप सारी जिंदगी तो ख्याल किया नहीं और फिर अब आके आप ख्याल करेंगे?
अच्छा, तो
ठीक है, थोड़ा 19-20 का फर्क होगा ऑफकोर्स कि चलो भाई, लेकिन वो बात नहीं होगी जो कि आप अपनी, जब आप 30 इयर्स के हो रहे हैं और आपने अपना ख्याल करना शुरू कर दिया है तो वो फिर सही रहती है, आपकी स्किन कभी खराब नहीं होती है.
अच्छा, तो फेसबुक पर जब हमने आपकी तस्वीर और आपके बारे में इन्फॉर्मेशन पोस्ट की तो बहुत सारे लोगों ने तो बहुत सराहा, और पहले तो ये बताया, ये भी उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि एक बलोची खातून है और उन्होंने इस शोबे में इतना नाम पैदा कर रही है यहाँ पर। और कुछ लोगों ने अपने मसाइल भी लिखे। मोहम्मद इरफान ने पूछा कि उनके चेहरे की जिल्द बहुत ऑयली है तो वो किस किस्म का फेस वॉश इस्तेमाल करें, और क्या कोई ऐसा फेस वॉश जी पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मैं कौन सा
कौन से कहीं ऐसा फेस वॉश लेना वो जिसके अंदर ऑयल नहीं हो, लिखा हुआ होता है उसके अंदर। अब
अच्छा
पाकिस्तान पे मुझे वहाँ पता नहीं है कि वहाँ पे कौन कौन सा आजकल चल रहा है, लेकिन ये है कि वहाँ पे जो भी वो लें वो ऐसा लें जिसके ऊपर लिखा हुआ हो कि ऑयल
अच्छा।
नहीं है इसके अंदर,
अच्छा,
तो ही इज फाइन देन। और मतलब मुंह 2-3 दफा दिन में बार बार ठंडे पानी से वॉश करें फेस को, वो हेल्प करेगा उनको।
अच्छा। इसी तरह मोहम्मद इसहाक साकी साहब ने लिखा था कि इनके चेहरे पर कील मुहासे थे जो एंटीबायोटिक से दूर तो हो गए, लेकिन अभी भी कभी कभी इनके जिस्म में कुछ हिस्सों में खुजली होती है और तो जिस्म के दूसरे
उसके
हिस्सों
लिए
में।
ही कैन आई थिंक ही कैन गो टू द डॉक्टर, यू नो डॉक्टर बता सकता है ये सब चीज है
अच्छा,
ना, वो तो हम नहीं बता सकते।
ये आप इस तरह ऑनलाइन या इस तरह बगैर देखे आप नहीं कुछ सजेस्ट कर
नहीं
सकते
तो
ना।
ऐसे तो आप कुछ नहीं कह सकते
अच्छा,
जी।
और डेरा गाजी खान के अदनान अहमद ने जो पूछा था उसका तो आप जवाब दे ही चुकी हैं कि इनके सर के बाल गिर रहे हैं तो ये क्या करें।
जी, ऑयलिंग करें, विटामिन्स खाएं।
हाँ,
जी,
वाइटामिन्स खाएं तो कौन से वाइटामिन्स अमूमी तौर पर जिल्द के लिए।
मल्टी विटामिन की रोज से एक गोली ले ली विल बी फाइन।
अच्छा,
जी
और
जी
वैसे जो स्किन के लिए वाइटामिन ई कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है।
हाँ, विटामिन ई बहुत अच्छा है स्किन के लिए। और पता ही कि सबसे अच्छी चीज तो है कि लाइक ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, पानी जितना पिए, पानी इतनी अच्छी चीज है आपके स्किन के लिए कि आपको 3-4 दिन पिए और आपको देखेंगे फर्क अपने स्किन पे।
तो ये कुछ सवाल किए थे, लेकिन कुछ और भी सवाल बाकी हैं, लेकिन हम आपसे बाद में करेंगे।
जी
गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप हमारे जो सुनने वाले हैं उनको ये बताएं कि मोटी मोटी चीजें क्या हैं, अगर वो चाहें कि अपने चेहरे की जिल्द को, अपनी शख्सियत को जाजिब नजर रखें तो वो क्या करें, किन किन चीजों पर वो अमल करें कि जब वो कहीं निकलें तो पता लगे कि कोई शख्सियत आ गई है महफिल में, और इसके
लेकिन
बावजूद कि
पहले तो ये है
अल्लाह
कि
ने उन्हें
सफाई,
हुस्न की इतनी दौलत नहीं दी लेकिन फिर भी वो अच्छे नजर आए।
देखिए दौलत से जो है ना आप खूबसूरत बनेंगे नहीं, सीधी सी बात है। अल्लाह ताला ने बनाया आपको, जो आप हैं वो आप हैं। थोड़ी सी चीजें हैं जो कि हमारे मतलब मजहब में भी हैं, इस्लाम में भी हैं। अपने आप को साफ सुथरा रखें, साफ सुथरे कपड़े पहने। अगर आप बाहर निकलते हैं तो कम से कम अपने बालों को एक अच्छे तरीके से, चलो भाई अगर आप ब्लो ड्राई नहीं भी कर सकते हैं तो थोड़ा सा कोई यू नो लाइक अगर कर्ल्स हैं आपके बालों में थोड़ा सा मूस लगा के उसको थोड़ा सा आपने वो कर लिया, थोड़ा स्क्रंच कर लिया बालों को। कभी अगर स्ट्रेट बाल हैं तो आपने अच्छे तरीके से उसको ब्रश करके आपने अच्छे स्टाइल से बना लिए, बांध लिए अपने बालों को। अपने स्किन पे थोड़ा सा आपने फाउंडेशन हल्का सा लगा के, ब्लश ऑन लगा के, लिप ग्लॉस लगा के, यू नो आप अच्छे क्यों नहीं, मतलब ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है।
और जब इंसान का चेहरा वो सही हो तो उसमें वो जो एतमाद उसकी शख्सियत में पैदा होता है वो उसकी शख्सियत को मेरा ख्याल है कि जाजिब नजर बनाने में किरदार अदा तो करता है ना।
बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। इसी तरह छोटा से छोटी सी वो एक है, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको बता दूं। मेरे पास एक पाकिस्तान में एक क्लाइंट मेरे पास आई जब मैं योगा एरोबिक्स की क्लासेस कर करती थी, तो वो मेरे पास आई एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोना शुरू हुई, रोती जाए। मैं क्या हुआ आपको, आप क्यों रो रही है, कह रही क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो मुझे मना करते हैं कि हमारे स्कूल नहीं आओ, मेरे हस्बैंड आज तक मुझे कभी लंच या डिनर पे बाहर नहीं लेके गए। अच्छा क्योंकि ऐसा क्या, क्योंकि मैं इस तरह हूँ, बेचारी जरा मोटी भी थी बहुत, और यू नो सांवला सा रंग उनका, बड़ी सिंपल लुकिंग बॉडी शादी थी वो। तो खैर उनका मैंने कोई मेरे साथ उनका रहा कोई 1 साल का साथ था उनका और मेरा, और उन्होंने काफी अच्छा लूज किया, कोई 60-70 pounds लूज कर लिए उन्होंने। फिर हमने उनकी स्किन का पूरा फेशियल किया, ब्लीच किया, उनको कपड़े अच्छे लेके दिए, उनका हेयर कट किया, सब कुछ करके जब हमने कहा चले भी आज तो आप सेट हो गई है, साल हो गया पूरा, इतना अच्छा आपने लूज किया। जब उनको तैयार करके उनके घर जब हमने भिजवाया तो आप बिलीव नहीं करेंगी कि नेक्स्ट डे जब वो आई है और उन्होंने मुझे जो दुआएं और जो प्यार किए ना रो के, वो मैं आज तक नहीं भूल सकती। कहती अम्बर तुम बिलीव नहीं करोगी कि मेरे बच्चे जो है ना वो मुझे कह रहे थे कि प्लीज मम्मा आपने हमारे स्कूल आना ही आना है। मेरे मियाँ ने मुझे फर्स्ट टाइम कहा कि चलो मेरे साथ डिनर से खाना खाने बाहर।
अच्छा,
तो आप
लेकिन
देखिए कि इंसान कितनी चेंजेस आते हैं, थोड़ा
बिल्कुल, एक थोड़ा सा अपने आप पर तवज्जो देने की
सा
जरूरत
आप
है।
ख्याल करें तो आप, मैं किसी और हर कोई कर सकता है, ये नहीं है कि मैं हूँ कोई बड़ी चीज या कोई, हर हर इंसान कर सकता है, मेहनत और थोड़ा सा अपना ख्याल करना है आपने।
तो ये यही गुर है और यही आप लोगों का क्या कहना चाहिए कि आपकी बड़ी बात है कि आप वो फनकार हैं जो कि एक रॉ मटेरियल को या एक रॉ हालत में जो चीज़ होती है उसको इतना खूबसूरत बना देते हैं, इतना प्रेजेंटेबल बना देते हैं कि सब लोग वाह वाह कर उठते हैं और बाज़ात पहचानने से इनकार कर देते
बल्कि
हैं।
आप चेहरा देखते हैं ना क्लाइंट का, जब शीशे में मुस्कुराता हुआ तो आपकी वसूलियत हो जाती है, पैसे तो बाद की बात है, उसी वक्त आपका दिल खुश हो जाता है कि काम अच्छा हो गया
काम
है ना,
अच्छा हो
हमारा
गया।
क्लाइंट खुश हो गया।
तो लेकिन इसमें जाहिर है कि इसमें पैसा तो लगाना पड़ता है ना,
जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता है।
क्योंकि काफी मुशाहदे में तो यही आया ना कि ये काफी महंगे होते हैं, ये जो पार्लर्स होते हैं, तो पार्लर्स वालों को अगर थोड़ा सा ये ख्याल आ जाए कि वो खवातीन जो अफोर्ड नहीं कर सकती उनके साथ अपना लेवल कम करें अपने जो फीस का, तो ज्यादा से ज्यादा खवातीन इस्तफादा कर सकेंगे, लेकिन हमने देखा है कि बहुत ज्यादा रेट्स होते हैं इनके
इसके क्या मतलब
हेयर स्टाइलिंग के।
कलर्स
हाँ, ये जितने भी पार्लर्स होते हैं।
नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये हमारे लोग पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं, मेरी प्राइसेस तो बहुत रीजनेबल हैं,
अच्छा, तो
बहुत रीजनेबल रखी है मैंने ताकि हर कोई अपना काम करवा सके, किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि दिस इज टू मच यू नो।
तो
और अगर किसी का टू मच वाली बात होती भी और आपको पता हो जाए कि इंसान ऐसा नहीं कर सकेगा तो आप खुद ही ख्याल कर लेते हैं उन लोगों का। बात यह है सिर्फ कि आप निकलें घर से और अपना ख्याल करें।
अच्छा, तो और एक जरिया जो आपने अपने सैलून को बनाया, ये तो हो गई ना बात, आपने जो मेकअप है और जो हेयर स्टाइलिंग है इस पर आप काम कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपने सैलून को एक जरिया बना दिया है प्रमोट करने के लिए पाकिस्तानी लिबास को, पाकिस्तानी कल्चर को, पाकिस्तानी खुशों को खास तौर पर। तो कुछ बताइए
हाँ
कि
जी,
ये आपको ख्याल कैसे
हाँ जी,
आया और
एक
कैसे
हमारी
आप।
है लाहौर में है एक बंदी मतलब बच्ची है, वो उसे स्टार्ट की है, ये खुद से वो खुद बना रही है और भेज रही है यहाँ पर। और इसमें कोई मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, बस मेरी एक जगह है, इस जगह से अगर किसी को भी कोई फायदा होता है तो क्यों नहीं हो। तो ये है कि कपड़े भी भिजवाते हैं लोग, डिफरेंट जगह से आते हैं कपड़े, डिफरेंट डिजाइनर्स हैं और बस उनके कपड़े होते हैं यहाँ पे, वो क्लाइंट्स आते हैं जिसको जो पसंद आया उसने ले लिया, गोरे भी लेते हैं तो उनको भी अच्छे लगते हैं हमारे ड्रेसेस, तो ये चीज भी साथ साथ चल रही है अल्लाह का शुक्र है, और ज्वेलरी भी है हमारे पास
हाँ,
वो भी। जी हाँ
तो इस तरह आपने एक तरह से एक तो अपना बिजनेस भी आप कर रही हैं, लेकिन साथ साथ आप पाकिस्तान की सकाफत को भी प्रमोट कर रही हैं अपने इसी
बिल्कुल जी, पाकिस्तान को हम कैसे भूल सकते हैं, पाकिस्तान तो हमारे साथ है, दिल के अंदर है।
तो यही सवाल चित्राल से याकूब शाह ने पूछा था फेसबुक पर कि पाकिस्तानी कल्चर को बैरून मुल्क किस तरह प्रमोट किया जा सकता है। तो इसका एक आप तो अपने लेवल पर इस तरह कर सकती है, लेकिन और आप क्या कहेंगी किस तरह जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में बैठे हैं वो किस तरह और क्या अंदाज हो सकता है पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने का।
काफी चीजें हैं हमारे पाकिस्तान की, बहुत चीजें हैं कि जो कि यहाँ पर अब आना भी शुरू हो गई हैं और लोगों के पास भी हैं, हमारे रेलियां बनती हैं, हमारे बलोची ड्रेसेस हैं, हमारे सिंध की जो रेलियां हैं वो मतलब वो तो बहुत ही मतलब लोग पागलों की तरह, यहाँ तक कि अब तो आप अगर यहाँ पे जाएं टारगेट या दूसरी शॉप में जाएं उसी को कॉपी किया अगर उन लोगों ने, और काफी ऐसी चीजें हैं बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते
और
हैं।
इसमें
थोड़ी
आप समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत का भी कोई रोल हो सकता है।
अगर वो चाहें तो क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उनका साथ चाहिए होता है हर चीज में, अगर वहां से कुछ सामान यहाँ आ रहा है और यहाँ से सामान वहां जाना चाहता है तो वो हो नहीं सकता ना कुछ, और वहां से जो चीजें आ रही होती है इतना ज्यादा कस्टम और इतना ज्यादा वो हो जाता है कि लोग सोचते हैं फिर हम इतना पैसा कैसे लगाएं।
तो बहरहाल अगर हुकूमत तवज्जो दे तो पाकिस्तान की जो दूसरी सनती चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, दूसरी सकाफती चीज़ें हैं, उनका यहाँ पर बाहर
बहुत
की दुनिया
चीजें
में।
हमारे गांव में इलाकों में औरतें इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाती हैं, उनका सामान यहाँ पे आ सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम, अब ये है कि गवर्नमेंट अगर साथ दे और उन लोगों का भी कोई साथ दे तो फिर कुछ हो सकता है। ऐसे तो
लेकिन छोटे पैमाने पर जाहिर है कि अगर इंडिविजुअल्स चाहें तो अपना छोटा मोटा तो ये काम जारी रख सकते हैं, जैसा कि आपने किया हुआ है।
जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा कोई शोरूम खोल लें या बहुत बड़ा कोई स्पा खोल लें, नहीं ये जरूरी नहीं है। आप एक छोटी से भी उससे काम से अपना काम, मेरा ये है कि आप छोटे से भी उससे अपना काम शुरू करें, आपकी मेहनत है और जब लोग आपका अच्छा काम देखते हैं वो ये नहीं सोचते कि हम किसी एक मामूली से स्टूडियो पे बैठे हुए हैं या हम एक बहुत बड़े अवेरा के स्पा में बैठे हुए हैं।
तो ये तमाम चीजें,
सर्विस, आपकी चीजें, आपके सब कुछ काउंट करते हैं ना।
अच्छा, बेहद शुक्रिया अंबर नजम। एक बार फिर एक ब्रेक का वक्त हो गया तो एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
अच्छा ठीक है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रमा है जिंदगी में हमारी आज की मेहमान हैं मेकअप और हेयर स्टाइलिंग की एक माहिर और कारोबारी दुनिया में आगे बढ़ती हुई एक पाकिस्तानी अमरीकी खातून अंबर नजम, जो यहां अमरीकी रियासत वर्जीनिया में एक ब्यूटी और हेयर सैलून बड़ी कामयाबी से चला रही हैं। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली हमारी मेहमान अंबर नजम अपने हेयर और ब्यूटी सैलून लैलाज स्टूडियोज में पाकिस्तान के रिवायती और जदीद मलबूसात और ज्वेलरी पेश करके इसे पाकिस्तान के रिवायती और जदीद सकाफती रंगों को अमेरिका में मुतारिफ कराने का एक जरिया भी बना रही हैं। हमारी मेहमान के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/हरदम रवा है जिंदगी और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasmeenjameel.voaurdu। हमारी मेहमान अंबर नजम इस वक्त मौजूद हैं अमरीकी रियासत वर्जीनिया से टेलीफोन पर हमारे साथ।
जी अंबर नजम, आप एक पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेस वुमेन हैं और इसको हम छोटा कारोबार कहते हैं, और यहाँ अमेरिका में पाकिस्तानी अमरीकी ख़वातीन ज़रा कम ही बिजनेस के शोबे में दिखाई देती हैं, लेकिन भारत और ज़िंदगी के दूसरे शोबों में इनकी तादाद मौजूद है। आजकल जबकि अमरीका में तारीख की पहली खातून सदारती उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि वो छोटे कारोबारों को फ़रोग देंगी, तो पाकिस्तानी और तारकीन वतन ख़वातीन इस मंजरनामे को कैसे देख रही हैं और क्या वोट देने के हवाले से ये मंजरनामा उनकी सोच पर असरअंदाज हो रहा है? और हमने आपसे ये सवाल इसलिए किया कि आपका क्योंकि ख़वातीन से राबता रहता है और हर कम्यूनिटी की खातून आपके पास आती है, तो क्या आप देख रही हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, उनके क्या तासुरात हैं इस वक्त?
हाँ जी, मेरे पास जैसे कि हर तरह के लोग आते हैं और हर कोई उनको वोट देने के लिए तैयार है और सब यही सोच रहे हैं कि औरतों के लिए बहुत अच्छा होगा, स्पेशली स्मॉल बिजनेस जो लोग अपनी जैसे हम लोग करते हैं, सब छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उनके लिए लोन लेने के लिए बहुत इजी होगा, काफी चीजें आसान हो जाएंगी हम लोग औरतों के लिए स्पेशली। तो अब देखें, कोशिश तो सबकी यही है, वोट भी इसीलिए सब लोग देना चाह रहे हैं, अब आगे क्या होता है ऊपर वाले को पता है। लेट्स सी।
लेकिन उनका वो ये समझती हैं कि अगर कोई खातून सदर अमेरिका की बन गई तो उससे खवातीन की ओवरऑल सूरत हाल बेहतर होगी,
बहुत फायदा होगा जी, बहुत फायदा होगा, काफी चीजों में होगा, बिल्कुल।
अच्छा, ये उनकी सोच है और ये उनके उसके वोट देने के प्रोसेस पर भी आप समझती हैं कि असरअंदाज हो सकती है?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो, दे रहे हैं लोग, काफी लोग तो इस वजह से भी दे रहे हैं।
अच्छा, लेकिन आमतौर पर जो खवातीन आपके स्टूडियोज में आती हैं अपना फैशन के लिए, मेकअप कराने के लिए, बालों के बनवाने के लिए, उनसे जब आपकी इंटरेक्शन होती है तो ज्यादातर किन मौजूद पर आपकी इंटरेक्शन होती है, अलावा मेकअप और हेयर स्टाइलिंग के कुछ सियासी गुफ्तगु भी होती है कभी?
होती है, हर तरह की होती है, यू नो, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, जब अपना काम कर रहे होते हैं, उसमें हम पॉलिटिक्स और रिलीजन दो चीजों को नहीं लेकर आए, क्योंकि उसमें गोरे लोग भी हैं, इंडियंस भी हैं, हर तरह के लोग होते हैं ना, हर जगह के लोग होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम पॉलिटिक्स और इन चीजों को बिजनेस में, यहाँ पे प्रोफेशनली वो अच्छा नहीं लगता कि आप इस टॉपिक पे आए, तो इसलिए अगर कोई आता भी है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि तरीके के साथ उस बात को खत्म करते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक वो है, हर किसी का अपना मजहब है, सब चीजें यू नो तो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है.
अच्छा, तो उस वजह से फिर आप इन चीजों पर तवज्जो ज्यादा नहीं देती, फोकस करती हैं अपने
उस... ज्यादा हमारा टॉपिक जो होता है वो डाइट प्लान पे होता है, दूसरी चीजों पे, फैशन पे और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. और
अच्छा अच्छा, हमारे पाकिस्तानी घरानों में बहुत सी ऐसी लड़कियां और ख्वातीन मौजूद हैं जो कुदरती तौर पर इस शोबे की सलाहियत रखती हैं, तो लेकिन जाहिर है उनको मौके नहीं मिलते, या तो जैसे कि माशरा उन्हें इजाजत नहीं देता कि वो घर में इस शोबे को अपनाएं, ना बाहर निकलने देते हैं. उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है लेकिन बेचारियों को उसका इजहार का मौका नहीं मिल रहा.
बस उनको बाहर निकलना चाहिए और अपना काम करना चाहिए और स्ट्रांग रहना चाहिए. करें, वो मेहनत करें, चाहे घर पे बैठ के क्यों नहीं करें. बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आप घर से बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं.
मतलब
बहुत
क्या
सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं.
तो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट के जरिए भी ये काम घर से शुरू हो सकता है अगर उनके अंदर ये हुनर मौजूद है.
बिल्कुल बिल्कुल. देखें, आप जो है ना छोटी सी चीज से ही शुरू करते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं. आप जैसे मैक का मेकअप ले लें, आप ये दो नेबर्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो फ्रेंड्स थी, ठीक है. तो उन्होंने घर से ही शुरू किया. इसी तरह अवेरा का कलर जो था वो भी घर से ही बंदे ने स्टार्ट किया था अपने बेसमेंट से, और वो कहाँ से कहाँ आज उसका नाम है कि आप लंदन चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ.
तो आप उनके उनको इस वक्त उन खवातीन को हौसला देंगी कि अगर आपके पास कोई हुनर है और आप समझती हैं मसलन बहुत अच्छा.
बिल्कुल, वो करें, इस चीज में पीछे नहीं हटे, वो करें, घर पे बैठ के करें, कोई ऐसी बात नहीं है. और कोई किसी चीज में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, काम करने में, मेहनत करने में किस बात का कॉम्प्लेक्स है. कुछ लोग जो है वो अपनी ईगो, उनका स्टाइल, उनका नाम, और वो बैठ जाते हैं, नहीं हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यूं करेंगे तो वैसे. नहीं 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 नहीं, मेहनत करें, करें जो दिल करता है वो काम करें. बाहर नहीं निकल सकते, घर से शुरू करें.
तो ऐसे ऐसे घरानों के जो दूसरे जो उनके खानदान के अफराद हैं उनको इस वक्त आप कुछ कहना चाहेंगी कि ऐसी बच्चियों को जिनमें ये टैलेंट मौजूद है,
बच्चियों को जो है ना उनको चाहिए कि उनको सिखाएं, जो बच्चियों को शौक है. मेरे पास अभी दो बच्चियां आजकल मैं उनको सिखा रही हूँ, अब उनके कॉलेज शुरू हो गए तो अब वो चली गई हैं. और उनको शौक था बट उनके ये था कि घर वाले नहीं पढ़ना है, सिर्फ नहीं, हर चीज आनी चाहिए आपको. उनको मैंने सिखाया, अब उनके मतलब आगे जाके किसी वक्त भी आपके कोई भी चीज काम आ सकती है, क्योंकि कल तो किसी ने भी नहीं देखा अपना.
तो चित्राल से याकूब शाह ने फेसबुक पर आपके लिए यही सवाल पोस्ट किया था कि आप यहाँ पर दूसरी खवातीन की किस तरह मदद करती हैं, तो आप ये कहेंगी कि आप यहाँ पर दूसरी खवातीन को सिखाती भी हैं?
बिल्कुल, अगर मेरे पास कोई आता है और वो सीखना चाहता है मैं उनको सिखाती भी हूँ. और अब इंशाल्लाह ताला मैंने लास्ट ईयर भी दो लड़कियों को सिखाया है, और जो कि उनका मतलब इतना नहीं था, बेचारे नहीं कर सकते थे और पढ़ रही हैं वो बच्चियां, मेहनत कर रहे हैं वो लोग, पढ़ी है कि उनको मैंने कहा नहीं ये भी सीखना जरूरी है, उन्होंने सीखा माशाल्लाह बहुत अच्छा. दो तीन लड़कियां और हैं वो भी बहुत अच्छा सीख के गई हैं, और सब माशाल्लाह अपना अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं.
अच्छा, तो अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने पाकिस्तान को क्या पे बैक कर रही हैं तो फिर आपका जवाब क्या होगा?
पाकिस्तान को मैं देखिए ना यहाँ पे बैठ के काम कर रही हूँ और पाकिस्तान से हूँ, यही हो गया ना काफी.
पाकिस्तान का इमेज बेहतर बना रही हैं आप?
बिल्कुल जी,
पाकिस्तानी खातून का तासुर.
अब देखिए ना यहाँ गोरों में हम बता रहे हैं ना कि हम पाकिस्तानी जो हैं कितने अच्छे लोग हैं, हम मुसलमान कितने अच्छे हैं, हर कोई ऐसा नहीं है. हम उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, उनको अच्छी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना. तो ये चीजें बड़ी काउंट, छोटी छोटी चीज काउंट करती है ना लाइफ में, हर छोटी चीज.
तो यहाँ बैठकर आप एक तरह से पाकिस्तान की सफीर का काम कर रही हैं कि पाकिस्तान के तासुर को बेहतर बना रही हैं और पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट कर रही हैं अपने स्टूडियो के जरिए. जो
बहुत खुशी होती है जब मेरा कोई गोरा क्लाइंट आता है और वो कहते हैं कि भाई ये ड्रेस हमें चाहिए, कहाँ कहाँ का है, कैसे बना है, हैंडमेड है, पाकिस्तान से है, यू नो यू फील प्राउड, और वो फिर लेके जाते हैं तो आपको खुशी होती है.
बिल्कुल. तो फैमिली मेंबर, अच्छा यासिर अली ने चार सदा से पूछा था कि आपकी कामयाबी का राज क्या है?
मेहनत.
अच्छा, मेहनत,
अल्लाह का साथ है और उसके बाद मेहनत है.
तो शौहर कहाँ चले गए?
शौहर कहाँ चले गए? हाँ,
मेहनत मेहनत आप किए जा रही हैं, ये नहीं बता रही कि भाई कितना कंट्रीब्यूशन है उनका.
बिल्कुल, उनका साथ था तो यहाँ तक पहुँचे ना, ये तो मतलब जाहिर
है. तो क्या कहेंगे कि कितनी अहमियत है कि घर वाले जो हैं वो जब तक कोऑपरेट ना करें तो एक खातून बिजनेस शुरू करे.
शौहर को अगर पका पकाया खाना मिल रहा है और उनके कपड़े तैयार उनको मिल रहे हैं, उनको हर चीज मिल रही है, ठीक है, वो क्यों किसी चीज में इंटरफेयर करेंगे?
نہیں لیکن پھر یہ تو تعاون نہ ہوا, اب آپ تو انہیں پکا کر کھانا دے رہی ہیں تو پھر یہ کیا تعاون ہوا, وہ پکا کر آپ کو کیوں نہیں کھلا کر کھلا رہے.
وہ ہاں یہ بات بہت اچھی بولی. ایکچولی ہمارے پاکستان کے جو ہمارے مرد ہیں نا وہ ان کو عادت ہے کہ ان کی خدمت کی جائے, تو ہم وہی اور میرے اندر بھی وہی چیز ہے آخر بلوچستان کی کہ اپنے میاں کی خدمت کرنی ہے. وہ بھی جگہ فیملی جو ہے نا وہ فیملی کمز فرسٹ. میری بچی ہے جس کے لیے میں نے دیکھے اسٹوڈیو سے کام شروع کر دیا کیونکہ مجھے اپنی فیملی کو دیکھنا ہے.
تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پاکستانی خواتین یہاں پر آ جاتی ہیں چاہے وہ پاکستانی امریکی بن جاتی ہیں چاہے وہ امریکہ کے کلچر میں رچ بس جاتی ہیں لیکن وہ اپنے جو روایتی چیزیں ہیں ان کو ساتھ تو رکھتی ہیں.
نہیں اس کو تو ساتھ رکھنا پڑے گا نا, آپ کو ایسی بات نہیں ہے. میرے ہسبینڈ مجھے ہیلپ بھی کر دیتے ہیں کام میں اور کبھی کوئی جیسے میرا کوئی شو ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں نے اپنی بچی کو ساتھ نہیں لے کے جانا تو وہ اس کا بھی خیال کر لیتے ہیں. تو یہ سب ہیلپ ان کی بھی میری بھی ایک ساتھ ہوتی ہے. پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم یہاں آ کے بھول جاتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے اور ہر چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے.
تو آپ نے اپنے گھرانے کو پاکستانی کلچر میں اور امریکی کلچر کے ایک کیا کہنا چاہیے اس کو ملا کر آپ یہاں پر زندگی گزار رہی ہیں.
بالکل جی بالکل.
تو اب آئندہ آپ کا کیا ارادہ ہے, آپ اپنے یہ جو کاروبار ہے اس کو کس حد تک توسیع کریں گی اور کیا آپ کا یہی ڈریم تھا کہ بس ایک اسٹوڈیو بن جائے یا ابھی آپ اور آگے کہاں تک جانا چاہتی ہیں؟
ابھی میرے بہت سارا ہے, ابھی اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اس نے چاہا تو میری بہت کوشش ہے کہ میں اس کو بڑا کروں. اپنی یوگا ایروبکس کی جو کلاسز ایک زمانے میں ہوتی تھی وہ بھی میں کر سکوں ساتھ ساتھ. تو اب اس کو مجھے آگے کرنا ہے, آہستہ آہستہ میں کر رہی ہوں محنت اپنی اور باقی وہی بات آ جاتی ہے اگر اللہ کا ساتھ ہوگا تو جیسے یہاں تک پہنچا ہے آگے بھی سب کچھ پورا کرے گا انشاءاللہ.
پاکستان کی جو بلوچی خواتین آپ کو سن رہی ہیں ان کو آپ اس وقت کیا کہنا چاہیں گی کہ بھائی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے وہ کیا کریں کہ وہ ایک دن آئے کہ وہ بھی آپ کی طرح بڑے فخر سے کسی میڈیا پر بیٹھی ہوئی انٹرویو دے رہی ہوں؟
ان سے میں یہی کہوں گی کہ بھائی سرداروں کے اور ان کے ناموں سے باہر نکلیں اور اپنا نام بنائیں باہر نکل کے, اپنے لیے بھی کچھ کریں. بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ, ایسی بات نہیں ہے. بہت کچھ کر سکتے ہیں بالکل.
اور ان کے گھر والوں کے لیے کوئی پیغام
کہ ان کو باہر نکل کے کچھ کرنے دیں؟ یہی ہے.
آپ کی بات وہ کیوں مانیں گے؟ ایسا آپ ان کو انسینٹیو دیں نا.
کہنے میں کوئی برائی نہیں, ٹھیک ہے نا؟
نہیں کہنے میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن شاید وہ ان کو اس کا میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں کہ ان کو وہ یہ سوچیں کہ اگر وہ اپنے گھر کی خواتین کو آگے بڑھائیں گے تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ ان کے گھرانوں کو ہی ہوگا, ان کے آنے والی نسلوں کو ہوگا. ایک پڑھی لکھی اور ایک با اعتماد اور خود اعتماد خاتون جو ہے وہ اپنے گھر کو بھی بہت اچھے طریقے سے چلاتی ہے اور اپنے گھر آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ بہت آگے تک لے کر جا سکتی ہے. تو بالکل وہی جو پرانی مثال ہم سنتے آ رہے ہیں کہ گاڑی کے پہیے ہیں نا جی, اب وہ سارے دونوں سب برابر کے پہیے ہوں گے
برابر
تو گاڑی زیادہ اچھی طرح سے چلے گی نا.
بالکل آپ نے صحیح کہا, تھینک یو سو مچ, آپ نے میرا بڑا اچھا ساتھ دیا.
اچھا تو اب پروگرام کا وقت تقریباً اب ختم ہونے کو ہے لیکن میں چاہوں گی کہ اب آپ اپنے ہم نے ابھی تک جو گفتگو کی ہے اس کا ایک سم اپ ہم اپنے سننے والوں تک پیش کریں کہ اگر آپ اپنی شخصیت کو جاذب نظر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کچھ کرنا چاہیے اپنے بالوں کے حساب سے, اپنے جلد کے حساب سے, اپنے چہرے کے حساب سے اور اپنے آپ کی ایک صحت مند پرسنالٹی کو پریزنٹ کرنے کے اعتبار سے؟
سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ اپنی سب لوگ اپنی ڈائٹ کو صحیح رکھیں, یہ آئل وائل کھانا کم کر دیں تو آپ کی اسکن ویسے ہی بہت اچھی ہو جائے گی. اور بس اپنا خیال کریں, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بولا کہ فیس کو کلین سے رکھنا, اچھا کلینزر یوز کریں جو بھی فیس کے لیے ہو, موئسچرائزر بہت ضروری ہے ہر روز لگانا وہ بہت, اور صاف ستھرے رہیں, اپنے بالوں کو ٹرم کرواتے رہیں, ہائی لائٹ کروائیں, کلر کروائیں, کچھ ڈفرینٹ لک دیں, آپ اچھے لگیں گے اور لوگ آپ کو ایڈمائر کریں گے اگر آپ اچھے لگ رہے ہیں تو. بس اچھے ڈریس اپ ہوں, ریزنیبل لگے انسان.
اور جلد کے حساب سے آپ نے کہا کہ صفائی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے.
بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. رات کو اپنے فیس کو اچھی طرح سے واش کر کے موئسچرائزر لگا کے پھر جا کے سوئیں.
اور کس عمر سے میک اپ شروع کریں؟
میک اپ جو ہے شروع کر لیں چلیں 17-18 ایئرس سے, آج کل بچیاں شروع کر دیتی ہیں وچ از اوکے, بٹ وہی بات آ جاتی ہے کہ بس صاف رکھیں اپنی اسکن کو اور بہت زیادہ ٹو مچ نہیں کریں شروع, تھوڑا تھوڑا کریں آہستہ آہستہ. بلش ون لگا لیا, لپ گلوس لگا لیا.
اور نیند,
نیند تو بہت ضروری ہے. 7-8 آورز یو ہیو ٹو سلیپ. اگر آپ سوئیں گے نہیں تو آپ کی اسکن گئی کام سے, چاہے وہ آپ ینگ ایج پہ ہیں یا پھر آپ.
کتنے گھنٹے کی نیند ایک عام نوجوان کو چاہیے ہوتی ہے؟
کم سے کم 8 گھنٹے تو آپ کو سونا چاہیے نا. 8 گھنٹے کی نیند تو بہت ضروری ہے.
اچھا,
اور یہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھائی اور سب چیزوں کی وجہ سے مشکل سے 3-4 گھنٹے سوتے ہیں, اور پھر عادت بھی ہو گئی بھی ہے بچوں کو رات کو جاگنے کی, وچ از ناٹ گڈ. آپ کی اپنی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, آپ کی شکل کے لیے, آپ کے بالوں کے لیے. ظاہر ہے جب آپ نیک سے بھاگم دوڑی میں جا رہے ہوں گے اپنے کام پہ تو آپ کو اس وقت نہ اپنے بالوں کا خیال ہوگا نہ اسکن کا خیال ہوگا.
تو پلان کریں اپنے تمام جو شیڈول ہے.
بالکل بالکل, اگر آپ نے 9 بجے کام پہ پہنچنا ہے تو صبح 6 بجے آپ اٹھ کے اپنا خیال کریں, اپنا ناشتہ کریں جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے لیے. پانی پئیں بہت, لائک پورے دن میں 12-13 گلاس پانی کے ہونے چاہیے. بہت یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں, آپ کی ڈائٹ بہت کاؤنٹ کرتی ہے.
اور ضرورت پڑے تو وائٹامنس کھائیں.
وائٹامنس کھائیں اور کیا کہتے ہیں, ونس اے منتھ فیشل کروائیں. لنچ نہیں کریں نا, ایک دن آپ باہر جا کے فرینڈس کے ساتھ لنچ نہیں کریں, وہ پیسے سنبھالیں اور جا کے ایک فیشل کروا کے آئیں.
اچھا, پیسے اپنے. اچھا, اور خاص طور پر جو سب سے اصل چیز ہے وہ یہ کہ اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنائیں.
بالکل,
جو ہنر ان کو آتا ہے اس کو استعمال میں لائیں.
بالکل بالکل جی بالکل.
اچھا, تو یہ تو ساری باتیں ہوئی ہیں, اور ہمیں توقع ہے کہ آپ نے جو کچھ ہمارے سننے والوں کو بتایا, خاص طور پر وہ خواتین جو ہمیں سن رہی ہیں, وہ یقیناً آپ کی ان مفید باتوں پر عمل کریں گی اور اپنی زندگی میں نظم و ضبط بھی لائیں گی, اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں گی, اپنی خوراک کا خیال رکھیں گی, اپنے چہرے کا خیال رکھیں گی, اپنی شخصیت کا خیال رکھیں گی, اور زندگی میں آپ ہی کی طرح آگے بڑھنے کے لیے راہیں تلاش کرتی رہیں گی اور ان پر چلنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں گی. بہت شکریہ امبر نجم, آپ نے ہمارے پروگرام ہر دم رمائے زندگی سننے والوں کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت سے کچھ نکالا. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا پروگرام سمیٹتے ہیں. ہماری پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر تھے سڈرک فریڈرک. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے اور سنیے کہ ہماری آج کے پروگرام کی مہمان کون تھیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان تھی میک اپ اور ہیئر اسٹائلنگ کی ایک ماہر اور کاروباری دنیا میں آگے بڑھتی ہوئی ایک پاکستانی امریکی خاتون امبر نجم, جو یہاں امریکی ریاست ورجینیا میں ایک بیوٹی اور ہیئر سیلون بڑی کامیابی سے چلا رہی ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ہماری مہمان امبر نجم اپنے ہیئر اور بیوٹی سیلون لیلاز اسٹوڈیوز میں پاکستان کے روایتی اور جدید ملبوسات اور جیولری پیش کر کے اسے پاکستان کے روایتی اور جدید ثقافتی رنگوں کو امریکہ میں متعارف کرانے کا ایک ذریعہ بھی بنا رہی ہیں. ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameel.voaurdu. ہماری مہمان موجود تھی یہاں امریکی ریاست ورجینیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.